नमस्कार श्रोता, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नहूम नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है नीनवे नगर का नाश। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पुराने नियम की पुस्तक नहूम से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि किस प्रकार नहूम परमेश्वर के दंड को हम तक पहुंचाता है। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि प्रभु सचमुच में आप न्यायी और अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। आज जब हम फिर से आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन करते हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब वे आपके वचन में से सुनते हैं, सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, उनके जीवन से आपका वचन बोलने और बातचीत करने पाए। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि आप उनकी सहायता करें जो इस समय बीमार हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, पारिवारिक जीवन से, व्यक्तिगत जीवन से। पिताजी, हम विनती करते हैं कि आप उनके जीवन को स्पर्श करें, उन्हें शांति और आनंद दे, छुटकारा दे, और आज के वचन के द्वारा उनसे बोले और बातचीत करें, आज के वचन पर अपनी आशीष दें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, नहूम अश्शूरों के विनाश की भविष्यवाणी करता है और कहता है कि उन्हें दंड देने में भी परमेश्वर न्यायी और धर्मी है। नहूम कहता है कि अश्शूरों की सेना कैसी भी सुगठित हो, वे परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते। परमेश्वर उन्हें ऐसा नष्ट करेगा जैसे बाढ़ से, और यथार्थ में वे पहले नदी की बाढ़ से नष्ट हुए, तदुपरांत बेबीलोन की सेना ने उन्हें अपने अधीन किया। अश्शूरों का सेनापति परमेश्वर की निंदा करता था और प्रजा को सताता और उनके साहस को तोड़ता था। उसने हिजकिय्याह को भी धमकी भरा पत्र लिखा, परंतु परमेश्वर ने कहा कि वह यरूशलेम पर एक भी तीर नहीं चला पाएगा। जी हां, इतिहास इसका गवाह है। इतिहास में ठीक ऐसा ही हुआ कि एक भी तीर यरूशलेम के अंदर नहीं चला। आइए हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए नहूम की पुस्तक एक अध्याय उसके 8 पद को पढ़ें। यहां पर लिखा है, परंतु वह उमड़ती हुई धारा से उसके स्थान का अंत कर देगा और अपने शत्रुओं को खदेड़कर अंधकार में भगा देगा। परमेश्वर अश्शूरों पर प्रबल होगा और उन्हें हरा देगा। उमड़ती हुई धारा अर्थात उफनती हुई नदी जो अपना तट पार करके विनाश ढाती है। माना गया है कि यह बेबीलोन की आक्रमणकारी सेना के संदर्भ में है जिसने नीनवे को जीत लिया था। यूनानी इतिहासकार स्टेसियास के अनुसार टाइग्रिस नदी की बाढ़ में नीनवे की शहरपनाह के फाटक टूट गए थे और राजमहल की नींव उखड़ गई थी। उसी समय बेबीलोन की सेना ने नीनवे नगर पर आक्रमण किया था। लिखा है अंधकार में भगा देगा। इस संदर्भ में मेरे मन में स्थाई दंड के स्थान के विषय प्रश्न उठता है। धर्मशास्त्र में खोए हुए के लिए अंधकार की चर्चा आग के स्थान से अधिक दी गई है। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 12 पद में प्रभु यीशु भी कहता है, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 13 पद में भी लिखा है, आग शरीर को जला सकती है आत्मा को नहीं, परंतु विवेक की आग वो है प्रभु यीशु का इनकार करना, और जो करता है जिसे नहीं करना चाहिए वह खोए हुए अनंत जीवन के अंधकार के बारे में पढ़ जाता है। मेरे प्रियो, आप देख नहीं सकते कि आप कहां जा रहे हैं। मेरे विचार में आग की अपेक्षा अंधकार नरक का वास्तविक एवं अति भयानक वर्णन है। यह आपके लिए एक नया विचार होगा। आप धर्मशास्त्र में इसकी खोज करें, आप ढूंढें तो आप इसे अवश्य ही पाएंगे। हम देखते हैं परमेश्वर का निर्णय कि नीनवे का सर्वनाश करें और सुसमाचार सुनाए। नहुम की पुस्तक 1 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो? वह तुम्हारा अंत कर देगा, विपत्ति दूसरी बार पड़ने न पाएगी। लिखा है, तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो? नहुम नीनवे वासियों से पूछ रहा है। जी हाँ, यहां पर हम देखते हैं कि डॉक्टर चार्ल्स फाइनवर कहते हैं कि उसने पूछा, क्या तुम इसराइल के परमेश्वर का सामना कर सकते हो? तब यहां पर लिखा है, वह तुम्हारा अंत कर देगा, वह अश्शूरों का अंत कर देगा। यशायाह नबी की पुस्तक 37 अध्याय का वृतांत हम पढ़ करके देखें, विपत्ति दूसरी बार पढ़ने ना पाएगी, उन्हें दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। उन्होंने उस अदृश्य रेखा को पार कर लिया है जिसे परमेश्वर ने रखा था। परमेश्वर को त्याग कर आप इस रेखा को पार कर सकते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर का अनुग्रह वहां नहीं पहुंचेगा। उस स्थान पर आप अनुग्रह ग्रहण करने के योग्य नहीं रहेंगे। नहुम 1 अध्याय के 10 पद में हम पढ़ते हैं जहां पर लिखा है, क्योंकि चाहे वे कांटों से उलझे हुए हों और मदिरा के नशे में चूर भी हों, तो भी वे सूखी खूंटी के समान भस्म किए जाएंगे। लिखता है, चाहे वे कांटों से उलझे हुए हों। अश्शूरों की सेना ऐसी गठी हुई थी कि उसे बेधा नहीं जा सकता था। कहता है, मदिरा के नशे में चूर भी हों, तो भी वे सूखी खूंटी के समान भस्म किए जाएंगे। परमेश्वर उन्हें पूरा का पूरा नष्ट कर देगा। इस भविष्यवाणी की पूर्ति यशायाह नबी की पुस्तक 37 अध्याय उसके 36 और 37 पद में व्यक्त है। मेरे मित्रों, यह क्या ही भयानक बात है कि परमेश्वर आपके विरुद्ध में खड़ा हो जाए, और यह भी इसलिए क्योंकि आप पापों की सीमा लांघ चुके हैं, पार कर चुके हैं, और यही कारण है कि परमेश्वर को आपके प्रति उठ खड़ा होना पड़ रहा है। मैं युवा वर्ग से कहता हूं कि युवा अवस्था में ही जब मस्तिष्क कुशाग्रता में पूर्ण है, प्रभु यीशु को आप ग्रहण कर लें, आप बुद्धि नशे में समय लगाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब आप निर्णय लेने के योग्य न रह पाएंगे। एक बार एक शराबी ने मुझे फोन किया तो मैंने उससे बात करने से मना कर दिया। मैंने कहा, जब आपका नशा उतर जाए तब आप मुझे फोन करना। निनवे उस स्थान पर था जहां वह निर्णय लेने के योग्य भी नहीं था। मेरे श्रोता मित्रों, मैं नहीं जानता कि इस समय आपकी स्थिति क्या है। मैं यह भी नहीं जानता कि आप इस समय निर्णय लेने के योग्य हैं या नहीं। यदि हाँ, तो आप अवश्य ही भला निर्णय लें। हम देखते हैं कि अन्य सब छोटे भविष्यद्वक्ताओं के साथ नहुम भी परमेश्वर की राजनीति प्रकट करता है। नहुम कहता है कि आप माने या ना माने, आपके समझ में आए या ना आए, किसी मनुष्य का किसी देश को दंड देने में परमेश्वर भला है। फिर भी परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, वह भटके हुओं से प्रेम करता है। पहला योहन्ना के पत्र 2:2 में लिखा है, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। जी हां, इसमें आप भी शामिल हैं, आपके पापों का भी वह निवारण है, प्रायश्चित है, वही आपको छुटकारा दे सकता है। मनुष्य पाप के कारण भटका हुआ है और परमेश्वर के उद्धार को नहीं पाता है। जब वह परमेश्वर के उद्धार की पेशकश को स्वीकार करता है तो मैं मानता हूं कि पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य को दिए गए उद्धार के निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए। परंतु उद्धार के निमंत्रण की प्रतिक्रिया में बहुत अधिक तो नहीं, परंतु कुछ मनुष्य परमेश्वर की ओर फिरते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि रेडियो द्वारा प्रचार करने से असंख्य मनुष्यों तक परमेश्वर का वचन निमंत्रण के रूप में पहुंचेगा। नहुम बहुत दूर की बात करता है। परमेश्वर निनवे नगर को दंड देगा और वह ऐसा करने में वह न्यायी और धर्मी है। जी हां, परमेश्वर प्रेम भी है जो हमें समझाना चाहता है और हमें समझता है, परंतु यह अति सत्य है कि वह दंड भी देता है। नहुम की पुस्तक 1:11 में हम पढ़ते हैं, तुझ में से एक निकला है जो यहोवा के विरुद्ध कल्पना करता और नीचता की युक्ति बांधता है। मेरे विचार में सब रूढ़िवादी टीकाकार मानते हैं कि यह नीचता की युक्ति बांधने वाला सिन्हरीब है, अश्शूरों का राजा। सिन्हरीब का आक्रमण धर्मशास्त्र में 3 पर व्यक्त किया गया है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 18:19 में, तब दूसरे इतिहास की पुस्तक 32 में, और यशायाह नबी की पुस्तक 36:37 में परमेश्वर 3 एक बात को कहता है, तो इसका अर्थ है रुको, देखो और सुनो। परमेश्वर का एक ही बार कहना बहुत है, परंतु जब वह 2 कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तो वह एक महत्वपूर्ण बात है। परंतु जब वह किसी बात को तीन बार कहे तो वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है। इतिहास में पढ़ने को हमें मिलता है कि अश्शूर राजा सन्हेरीब ने रबशाके को सेना लेकर यहूदा के विरुद्ध भेजा और रबशाके ने यहूदा के राजा को हिजकिया को धमकी भरा पत्र भेजा। हिजकिया की जान निकल गई, वह सो नहीं पाया। उसने वह पत्र मंदिर में परमेश्वर के सामने रख दिया और परमेश्वर ने यशाया के हाथ संदेश भेजा कि रबशाके यरूशलेम में एक तीर भी नहीं चला पाएगा। उसे अकस्मात ही सन्हेरीब की सहायता के लिए मिस्र को जाना पड़ा। और इधर परमेश्वर ने अश्शूरों की सेना का नाश किया। यहूदा के लिए वे आतंक का कारण थे क्योंकि उन्होंने उत्तरी राज्य के साथ निर्दयता का व्यवहार किया था और यही कारण है कि परमेश्वर उन्हें दंड देना चाहता है। नहुम की पुस्तक एक अध्याय के 12 पद में हम आगे पढ़ते हैं, यहोवा यूं कहता है, चाहे वे सब प्रकार से सामर्थी हों और बहुत भी हों तो भी पूरी रीति से काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। मैंने तुझे दुख दिया है परंतु फिर ना दूंगा। मेरे मित्रों, यह एक असाधारण पद है और हम इसके अर्थ से चूकना नहीं चाहते हैं। लिखा है, चाहे वे सब प्रकार से सामर्थी हों और बहुत भी हों। मुझे यह बात समझ में नहीं आती है, परमेश्वर कहना क्या चाहता है। न्यू स्कोफील्ड रेफरेंस बाइबल में इस पद पर टिप्पणी दी गई है, जो पुरातत्व की खुदाई द्वारा परमेश्वर के वचन की सत्यता को सिद्ध करती है। इब्रानी अनुवादकों ने अश्शूरों के न्यायिक सूत्र को शब्दशः अनुवाद कर दिया है, इसलिए इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। 612 ईस्वी पूर्व के निनवे की खुदाई में अनेक तख्तियां पाई गई हैं, जिनमें से दर्जनों में यह सूत्र लिखा हुआ है, जो किसी कार्य को करने के लिए संगठित विविध उत्तरपंथियों को प्रकट करता है। नहुम उन्हीं की भाषा में कहता है कि यदि संपूर्ण राष्ट्र एक होकर यहोवा का विरोध करे तो भी परमेश्वर ही प्रबल होगा। ये शब्द इब्रानी के शास्त्रियों के लिए भी अबोध थे, परंतु यह एक प्रमाण है कि परमेश्वर अपने वचन को संरक्षित रखता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर का यह वचन हमारे लिए अबोध है, परंतु अश्शूर भली भांति इसे समझते थे। अन्य अनुवादकों ने भी इसे ज्यों का त्यों रख दिया क्योंकि वे इसका अर्थ समझ नहीं पाए थे। अनुवादक प्रायः आज के मनुष्यों की समझ के अनुसार वचन का अनुवाद करते हैं, जो मेरे विचार में उचित नहीं है। नहुम का यह पद प्रकट करता है कि परमेश्वर कहता है, यदि तुम समझ नहीं पाते तो भी उसे वैसा ही ग्रहण करो जैसा मैंने दिया है, और कठोर परिश्रम के साथ पढ़ने पर तुम एक दिन उसका अर्थ अवश्य समझ पाओगे। हमारी समस्या यह है कि हम सुस्त शिशुओं को हलवा खिलाना चाहते हैं। वे परमेश्वर के वचन के अध्ययन में अति आलसी हैं। मेरे विचार में हमें वचन के प्रति श्रद्धा रखना है। मैं भी इस उक्ति को नहीं समझता जब तक कि मैंने पुरातत्व की खोज को नहीं पढ़ा। आगे हम देखते हैं, नहुम एक अध्याय के 13 पद में लिखा है, क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा और तेरा बंधन फाड़ डालूंगा। नहुम के युग में भी यह भविष्यवाणी अर्थपूर्ण प्रतीत नहीं होती थी क्योंकि अश्शूरों का राज्य अभी बहुत समय का था, परंतु परमेश्वर ने कह दिया, मैं उनका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा। और वह यह भी कहता है नहुम 1:14 में, यहोवा ने तेरे विषय में यह आज्ञा दी है, आगे को तेरा वंश न चले, मैं तेरे देवालयों में से ढली और गढ़ी हुई मूर्तों को काट डालूंगा, मैं तेरे लिए कबर खोदूंगा, क्योंकि तू नीच है। नीनवे के लिए परमेश्वर का वचन कठोर है, कहता है मैं तेरे लिए कबर खोदूंगा। रूस के प्रधान क्रेस्चेव ने इंग्लैंड के लिए यही शब्द काम में लिए थे। वह नहीं जानता था कि यह बाइबल की उक्ति है। आपने किसी अशुर को देखा है तो कब देखा है? आज उनका कोई देश नहीं है। परमेश्वर ने ऐसा ही कर दिखाया। परमेश्वर ने यह भी कहा, मैं तेरे देवालयों में मूर्तियों को अर्थात प्रतिमाओं को काट डालूंगा। 612 ईस्वी पूर्व में मादियों ने जब बेबीलोन के साथ उन्हें जीता, तब उनके प्रार्थना स्थलों को नष्ट कर दिया गया, क्योंकि वे एक ही ईश्वर को मानते थे, वे मूर्तियां नहीं रखते थे। उन्होंने अशुरों की प्रतिमाओं को तोड़ डाली। यहां पर हम देखते हैं कि जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा ही हुआ। आज एक भी अशुर हमें दिखाई नहीं देता है, उनके देश नहीं है। मेरे मित्रों, आज भी परमेश्वर न्यायी है और सत्य है, वह झूठा नहीं है, वह अपने वचन का पक्का है। और इसी कारण से वह चाहता है कि हम अपने मनों को फिराकर उस सत्य परमेश्वर को ग्रहण कर लें, उसको जान जाएं, ताकि हम नाश होने से बचाए जाएं। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। आप वचन पर बने रहें, प्रभु से मांगे और उसमें बलवंत हो। प्रभु आप सबके साथ हो और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
सुबह शाम दूं मैं सदा यही, सुबह सुबह शाम दूँ मैं सदा यही, तू ही है जो गिरता को थाम ले, जो दबा हुआ हो गुनाहों में, तुझसे नजात का जाम ले, सुबह शाम दूँ मैं सदा यही, सुबह शाम दूँ मैं सदा यही, तू ही है जो गिरता को थाम ले, सुबह शाम दूँ मैं सदा यही। मैं ही कील पापों का वो मसीह, जो था छिद गया तेरे हाथ में, मैं ही कील पापों का वो मसीह, जो था छिद गया तेरे हाथ में, वो लहू बहा मेरे वास्ते, वो लहू बहा मेरे वास्ते, हर बूंद मेरा ही नाम ले, सुबह शाम दूँ मैं सदा ये। तेरी राह देखूं मैं हर घड़ी, मेरी रूह तरस तेरे लिए, तेरी राह देखूं मैं हर घड़ी, मेरी रूह तरस तेरे, मेरे आंसुओं में तेरी छवि, मेरे आंसुओं में तेरी छवि, गिरने न दे इन्हें थाम ले, सुबह शाम दूँ मैं सदा यही। तूने की अता है मुसर्रते, तू ही चश्मा अब्दी हयात का, तूने की अता है मुसर्रते, तू ही चश्मा अब्दी हयात का, मैं जीऊँ तो तेरे लिए जीऊं, मैं जीऊं तो तेरे।